आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में लाखों दिलों को छुआ है। माया एंजेलो की पहली आत्मकथा आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स।
जी हाँ, और ये मतलब सिर्फ एक आत्मकथा कहने से बात पूरी नहीं होती, ये तो 1930s और 40s के अमेरिका की कहानी है।
वो भी उस दौर का अमेरिका जहाँ नस्ल भेद बहुत गहरा था।
बिल्कुल, और उसी माहौल में बचपन के मुश्किल अनुभव, सामाजिक दबावों के बीच एक अश्वेत लड़की कैसे बड़ी होती है, ये उसकी कहानी है। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।
और इस कहानी की नायिका माया एंजेलो, जिनका असली नाम मार्गरेट एनी जॉनसन था, वो खुद भी एक कमाल की शख्सियत थी। कवियत्री, लेखिका, सिविल राइट एक्टिविस्ट, क्या नहीं थी वो।
सही कहा, और उनकी जो समझ थी ना, वो किसी डिग्री या कॉलेज से नहीं आई थी, वो तो जिंदगी के अपने तजुर्बों से, मतलब जो उन्होंने खुद झेला था, उससे बनी थी। ये किताब उसी अनुभव का एक बहुत ही सच्चा खरा बयान है।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए ही इतनी असरदार है ना।
हाँ बिल्कुल, ये किताब बताती है कि इंसान कितना लचीला हो सकता है, अपनी पहचान कैसे खोजी जा सकती है, और शब्दों में कितनी ताकत होती है।
ये दिखाती है कि कैसे भयानक नस्लवाद और गहरे, मतलब बहुत ही गहरे पर्सनल जख्मों के बावजूद भी इंसान अपनी गरिमा, अपनी उम्मीद बनाए रख सकता है।
और अपनी आवाज़ ढूंढ सकता है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी न कभी खुद को किनारे पर महसूस किया हो, या ऐसा लगा हो कि उसकी कोई आवाज़ ही नहीं है।
तो चलिए इस सफ़र को शुरू से महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआती थोड़ी मुश्किल है, विस्थापन से होती है।
हाँ, जब माया सिर्फ 3 साल की थी और उनके बड़े भाई बेली उन्हें उनके माँ बाप भेज देते हैं स्टैम्प्स आर्किनसॉ।
अपनी दादी एनी हेंडरसन के पास, जिन्हें वो प्यार से मम्मा बुलाते थे।
सोचिए जरा, इतनी छोटी उम्र में ये परित्याग का एहसास कितना गहरा असर डालता होगा।
मम्मा का घर अनुशासन वाला जरूर था, पर वहाँ एक ठहराव भी था। उनकी दुकान थी वहाँ, जो उस कस्बे में अश्वेत समुदाय के लिए अकेली दुकान थी। वो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर जैसी थी ना।
हाँ बिल्कुल,
और चर्च का भी बहुत प्रभाव था। ये सब उस नस्लीय अलगाव वाले माहौल में एक तरह की एक सुरक्षित जगह बनाते थे।
हाँ
लेकिन उस दायरे के अंदर भी छोटी माया को अकेलापन लगता था, और उन्हें लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है। उनका सबसे बड़ा सहारा कौन था? उनके भाई बेली।
बिल्कुल,
और वहीं उन्हें नस्लीय अलगाव की कड़वी सच्चाई का पहला एहसास भी होता है। वो डेंटिस्ट वाली घटना याद है?
हाँ, जब एक गोरे डेंटिस्ट ने सिर्फ इसलिए उनका इलाज करने से मना कर दिया था क्योंकि वो अश्वेत थी, चाहे उनके दांत में कितना ही दर्द क्यों न हो।
हाँ, वो सिर्फ एक बाहरी मना ही नहीं थी, वो उस छोटी बच्ची के मन में ये बात डाल रही थी कि शायद शायद वो दूसरों से कम है। ये नस्लवाद का वो असर है जो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। फिर उनकी जिंदगी थोड़ी बदलती है जब वो कुछ वक्त के लिए सेंट लुइस जाते हैं, अपनी माँ विवियन बैक्स्टर के पास।
हाँ, और ये स्टैम्प्स के गांव वाले माहौल से बिल्कुल उलट था। शहर का जीवन चकाचौंध भी थी पर स्थिरता नहीं थी।
और यहीं यहीं उनकी जिंदगी का वो भयानक मोड़ आता है।
जी, 8 साल की उम्र में उनकी माँ का जो प्रेमी था मिस्टर फ्रीमन, वो उनका यौन शोषण करता है।
और जब माया ये बात अपने भाई को बताती हैं और बाद में मिस्टर फ्रीमैन का मर्डर हो जाता है, तो माया के नन्हे मन पर ये बोझ आ जाता है कि उनकी आवाज़ जानलेवा है।
कितना खौफनाक है ये सोचना भी।
हाँ, और इसी अपराध बोध में वो करीब करीब 5 साल तक बोलती ही नहीं है। एक तरह का चुनावा गुंगापन, जैसे दुनिया से बिल्कुल कट गई हूँ।
ये बहुत दर्दनाक दौर था उनकी जिंदगी का। वो स्टैम्प्स वापस आ जाती हैं पर वो खामोशी उनके साथ रहती है।
लेकिन फिर अंधेरे में एक रोशनी आती है ना।
हाँ, और वो रोशनी थी श्रीमती बर्था फ्लावर्स।
श्रीमती फ्लावर्स स्टैम्प्स की ही एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत अश्वेत महिला।
उन्होंने माया की खामोशी के पीछे उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी सेंसिटिविटी को पहचाना। बिल्कुल, ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। श्रीमती फ्लावर्स ने माया को सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाईं, उन्होंने उसे लिटरेचर से मिलवाया, कविताओं की दुनिया दिखाई, उनकी लय, उनकी खूबसूरती।
वो उन्हें जोर जोर से पढ़कर सुनाती थीं।
हाँ, और उन्होंने ही माया को ये सिखाया कि शब्दों का असली जादू तब होता है जब उनमें इंसान की आवाज़ मिलती है। उन्होंने कहा था जैसे शब्द सिर्फ कागज पर लिखे होने से ज्यादा मायने रखते हैं, उन्हें गहरा मतलब देने के लिए इंसान की आवाज चाहिए।
ये सोचना ही कमाल है कि कैसे एक इंसान का थोड़ा सा ध्यान और कुछ अच्छी किताबें किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं।
श्रीमती फ्लावर्स ने माया को यह एहसास दिलाया कि उसकी आवाज बुरी नहीं है, जानलेवा नहीं है, बल्कि वो सुंदर हो सकती है, उसमें ताकत है।
और इसी वजह से माया धीरे धीरे उस लंबी खामोशी से बाहर आई।
हाँ, और यही उनके आगे के लिखने और बोलने की कला की नींव बनी। फिर किशोरावस्था में वो और बेली कैलिफोर्निया चले गए अपनी माँ विवियन के साथ।
वो दौर भी आसान नहीं था। अपनी बदलती बॉडी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर काफी उलझने थी।
माँ विवियन के साथ रिश्ता भी बड़ा कॉम्प्लेक्स था। प्यार था, पर उतार चढ़ाव भी बहुत थे।
लेकिन इसी दौर में हमें माया की वो जिद, वो हिम्मत भी दिखती है जो बाद में उनकी पहचान बनी। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने ठान लिया कि वो स्ट्रीट का कंडक्टर बनेंगी।
हाँ, और वो नौकरी उस वक्त लगभग सिर्फ गोरों के लिए थी। ये सिर्फ नौकरी पाने की बात नहीं थी,
ये उस सिस्टम को सीधी चुनौती थी।
बिल्कुल। उन्हें बार बार मना किया गया, लेकिन वो अपनी माँ की मदद से हफ्तों तक रोज सुबह ऑफिस पहुंचाती थीं, तब तक जब तक उन्हें नौकरी मिल नहीं गई।
और वो सैन फ्रांसिस्को की पहली अश्वेत महिला स्ट्रीट का कंडक्टर बनी।
जी, ये जीत उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके सेल्फ वर्थ के लिए बहुत बड़ी थी। इसने उन्हें सिखाया कि डटे रहो तो मुश्किलें हटाई जा सकती हैं।
बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो घर से भागकर कुछ बेघर टीनेजर्स के साथ एक जंकयार्ड में भी रही। ये भी उनकी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है।
किताब खत्म होती है जब माया 17 साल की उम्र में मां बनती है। उससे पहले अपने पिता के साथ मेक्सिको का एक सफर होता है जो कुछ खास अच्छा नहीं रहता।
अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूजन, एक छोटा सा रिश्ता, और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
लेकिन यहाँ एक और बात होती है। उनकी माँ विवियन और उनके सौतेले पिता, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं बिना किसी सवाल के।
हाँ, वो एक्सेप्टेंस उनके लिए बहुत जरूरी थी। बेटे गाय के जन्म के साथ किताब खत्म होती है, और यहाँ माया एक बेचारी विक्टिम नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक युवा माँ है जिसने अपनी सच्चाई को अपनाया है, जिम्मेदारी ली है, और शायद अपनी आवाज के साथ साथ जिंदगी का एक नया मकसद भी पा लिया है।
ये किताब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है ना? पहली बार इतने खुलेपन से, इतनी ईमानदारी से एक अश्वेत लड़की के अनुभव सामने आए, उसका दर्द, उसकी खुशियाँ, उसकी हिम्मत।
हाँ, इसने मुख्यधारा में एक नई आवाज को जगा दी।
तो इस पूरी कहानी से, जिंदगी से, माया एंजेलो के जो मूल विचार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो क्या उभर कर आते हैं?
देखिए, कई बातें हैं। सबसे पहले तो जैसा हमने कहा, लचीलापन, रिजिलियंस, भयानक नस्लवाद, पर्सनल ट्रॉमा, उसके सामने भी अपनी इंसानियत, अपनी डिग्निटी को बचाए रखना, ये दिखाता है कि इंसान अंदर से कितना मजबूत हो सकता है।
और आवाज का महत्व, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपनी बात कहना, अपनी सच्चाई को आवाज देना, वो जो खामोशी का दर्द था उससे बाहर निकलना कितना जरूरी था।
हाँ, उन्होंने बाद में लिखा भी ना कि अपने अंदर एक अनकही कहानी को दबाए रखने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। उनकी पूरी जिंदगी ही जैसे अपनी आवाज को खोजने ही कहानी है।
साहित्य और शिक्षा, इनकी ताकत भी साफ दिखती है। कैसे किताबें मुश्किल वक्त में सहारा बनती हैं, समझ देती हैं, उम्मीद देती हैं।
बिल्कुल, जैसे श्रीमती फ्लावर्स ने उनके लिए किया, किताबें रास्ता दिखा सकती हैं।
और पहचान का सवाल, सेल्फ वर्थ का, दुनिया आपको कैसे देखती है, खासकर खूबसूरती के पैमानों पर, उससे हटकर अपनी कीमत पहचानना।
हाँ, माया का खुद को बदसूरत महसूस करने से लेकर अपनी अंदरूनी ताकत पहचानने तक का जो सफर है, वो इसी संघर्ष को दिखाता है।
परिवार और कम्युनिटी की भूमिका भी अहम है, भले ही रिश्ते उलझे हुए हों। जैसे ममा की वो स्थिरता और विवियन का वो खुलापन, दोनों ने माया को बनाया।
सही। और अश्वेत कम्युनिटी का वो सपोर्ट नेटवर्क भी, जो मुश्किल में एक दूसरे के काम आता था।
हाँ, और ये भी कि नस्लवाद सिर्फ बाहर की रुकावट नहीं है, ये अंदर तक असर करता है, सेल्फ डाउट पैदा करता है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। ये भी माया की कहानी बहुत साफ दिखाती है।
बिल्कुल।
अगर हम इस पूरी यात्रा के तीन सबसे खास मोड़ चुनना चाहें, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जिन्होंने माया की जिंदगी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे दुखद वो 8 साल की उम्र में हुआ यौन शोषण, और उसके बाद मिस्टर फ्रीमैन की मौत। उससे जो अपराध बोध पैदा हुआ, उसने उन्हें लगभग 5 साल की खामोशी में धकेल दिया।
वो उनके बचपन का एक तरह से अंत था।
हाँ, एक गहरा सदमा जिसने दुनिया को देखने का उनका नजरिया बदल दिया। ये वो दर्द था जिससे उन्हें उभरना था।
दूसरा मोड़ तो यकीनन श्रीमती बर्था फ्लावर्स से मिलना ही रहा होगा, उस गहरी चुप्पी के दौर में उनका आना।
बिल्कुल, जैसे एक वरदान। श्रीमती फ्लावर्स ने उनकी खामोशी के पीछे की समझ को देखा। उन्होंने सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने मानवीय आवाज की खूबसूरती, उसकी ताकत का एहसास कराया।
उन्होंने माया को यकीन दिलाया कि उसकी आवाज कीमती है।
हाँ, इसने ना सिर्फ उन्हें दोबारा बोलने में मदद की, बल्कि उनके भविष्य के लिखने उनके पब्लिक स्पीकिंग की नींव रखी। ये उम्मीद का पल था।
और तीसरा मोड़, पहले दो तो बहुत अंदरूनी थे, पर्सनल थे, तीसरा शायद बाहरी दुनिया से जुड़ा था।
हाँ, आपने सही समझा। तीसरा मोड़ था सैन फ्रांसिस्को में पहली अश्वेत महिला स्ट्रीट कार कंडक्टर बनना, किशोरावस्था में।
वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, वो उस सिस्टम के खिलाफ उनकी पहली बड़ी पब्लिक जीत थी। बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी उनका डटे रहना और आखिर में सफल होना, इसने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उन्हें सिखाया कि वो लड़ सकती हैं, वो जीत सकती हैं। ये सेल्फ एम्पावरमेंट का मोमेंट था।
माया एंजेलो की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं लगती, पढ़ते हुए लगता है इसमें हम सबके लिए कुछ ना कुछ है, गहरे सबक है। आज ही हमें क्या सिखाती है?
बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो यही कि ये जो लचीलापन है, रेजिलियंस, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है, इसे डेवलप किया जाता है।
मुश्किलों का सामना करके,
हाँ, और दूसरों से मिले सहारे से, जैसे उन्हें मम्मा, बैली, शीमे की फ्लावर से मिला, और अपनी अंदर की ताकत को पहचान कर।
और ये भी कि ट्रॉमा से उभरने का मतलब उसे भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस अनुभव को अपनी पहचान में शामिल करके उससे सीखकर आगे बढ़ने के रास्ते बनाना होता है।
बिल्कुल, माया ने अपने दर्द को अपनी कला में, अपनी ताकत में बदला।
आवाज का महत्व, अपनी बात कहना, खासकर तब जब समाज या हालात आपको चुप कराना चाहें।
हाँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आजादी के लिए कितना जरूरी है। कई बार चुप रहना आसान लगता है, पर ये कहानी बताती है कि आवाज उठाना कितना पावरफुल हो सकता है।
मेंटरशिप की ताकत भी साफ दिखती है, कैसे एक इंसान जैसे श्रीमती फ्लावर्स किसी की जिंदगी बदल सकता है, उसमें भरोसा जगा सकता है।
हाँ, ये हमें प्रेरणा देता है कि हम भी किसी के लिए वो सहारा बने।
ये कहानी हमें सहानुभूति भी सिखाती है, नस्लवाद जैसे सिस्टमैटिक अन्याय का लोगों पर क्या असर होता है, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी साइकोलॉजिकल असर, उसे समझने में मदद करती है।
ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों पर, उनके सपनों पर, उनके आत्मसम्मान पर सीधा असर डालता है।
और साहित्य, कैसे पढ़ना और लिखना खुद को खोजने, समझने और यहां तक कि हील करने का जरिया बन सकता है।
माया ने शब्दों में पनाह ली और फिर शब्दों से ही दुनिया में अपनी जगह बनाई।
आखिर में एक घर की तलाश का थीम भी है। जब बाहर की दुनिया ठीक ना लगे, असुरक्षित लगे, तो अपने अंदर वो सुकून, वो अपनापन कैसे पैदा किया जाए?
हाँ, और माया ने आखिर में अपने लिखने में, अपनी आवाज में और अपने बेटे में वो अंदरूनी घर पाया।
तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें और सुनने वालों के लिए तीन खास बातें निकालें, तो वो क्या होंगी?
देखिए, पहली चीज जो दिल को छूती है वो है एक इमोशनल इनसाइट। अपने अंदर किसी कहानी को, किसी दर्द को दबाकर रखना बहुत तकलीफ देता है, और गहरे सदमे या चुप्पी के बाद अपनी आवाज को वापस पाना वो सिर्फ राहत नहीं है, वो एक जबरदस्त ताकत है, आजादी है। अपनी सच्चाई बोलना मतलब खुद को जिंदा करना है।
दूसरी एक इंटेलेक्चुअल इनसाइट, मतलब सोचने वाली बात, ये जो सिस्टमैटिक नाइंसाफी होती है जैसे नस्लवाद, ये सिर्फ बाहर मौके नहीं छीनती, ये अंदर से इंसान के सेल्फ वर्थ को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन लिटरेचर, एजुकेशन, अपनी बात कहना, ये इस अंदरूनी दबाव का विरोध करने के हथियार हैं, यह हमें सोचने और महसूस करने के नए रास्ते देते हैं।
और तीसरी एक यूनिवर्सल इनसाइट जो हम सब पर लागू होती है, असली रेजिलियंस सिर्फ मुश्किलें झेलना नहीं है, ये उनका सामना करना है, दूसरों में और खुद में ताकत खोजना है, और ये समझना है कि बहुत मुश्किल हालात में भी अपनी गरिमा बनाए रखी जा सकती है। जब दुनिया आपको अपनी जगह से हिलावा महसूस करे, तो अपने अंदर ही एक घर बनाना मुमकिन है, एक ऐसी अंदरूनी जगह जहां आप सेफ महसूस करें, सम्मानित महसूस करें, पूरा महसूस करें।
माया एंजेलो की कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने आसपास उन पिंजरे में बंद पक्षियों की आवाज सुन पा रहे हैं, या कहीं अनजाने में हम ही तो वो पिंजरा नहीं बना रहे?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।